आयत 21 और 22 में हमने अल्लाह सुबहाना तआला की रहमत, उसकी रज़ामंदी और जन्नतों के पाने की बात की। अगर आप देखें तो तीन काम थे, आमनु, हाजरु, वजाहदु, और तीन ही इसके बदले में अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें सुनाई गईं। इससे क्या पता चलता है कि दीन का खुलासा इन तीन लफ्ज़ों में है। अब जब इस अकीदे को अमली सूरत में ढालते हैं तो रास्ते में कुछ चीज़ें आती हैं, उनका तज़किरा है आयत 23 और 24, 23 और 24 को मैं इकट्ठा आपके सामने खुलासे में रखूँगी और फिर इंशाअल्लाह ताला हम इन दोनों पे डिस्कशन करेंगे। सूरह तौबा की मशहूर तरीन और ख़ूबसूरत तरीन आयात हैं, आइए देखते हैं। और ख़ास तौर पे हर एक इस आयत पे गौर करेगा जिसको वाकई अपने ईमान के तकाज़ों को पूरा करना है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं आयत 23, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हैं अपने ऊपर लें। क्योंकि जब तक कुरान पाक की कोई आयत हम अपने दिल पर नहीं लेते हमें वो समझ भी नहीं आती। ला तत्तखिज़ू आबाअकुम, मत बनाओ अपने बापों को, व इख़वानकुम और अपने भाइयों को, औलिया दोस्त, इनिस्तहब्बुल कुफ्रा अलल ईमान, अगर उन्होंने ईमान के मुकाबले में कुफर को पसंद किया। इस आयत में तमहीद बांधी गई है अगली आयत की। खुलासा क्या है? पिछली आयतों में हमने देखा कि ईमान के बाद हिजरत और हिजरत के बाद जिहाद करना था, लेकिन अब यहाँ रास्ते की बड़ी रुकावटें, और वो क्या है? अपनों की मोहब्बत। याद रखिए कि इस्लाम हमेशा हमें सिला रहमी की दावत देता है। दीन का बहुत बड़ा हिस्सा है रिश्तेदारों के हकूक़ पूरे करना और ख़ास तौर पे माँ बाप और भाई बहनों के साथ बेहतरीन ताल्लुक जो है उसका तो बहुत ही अजर है। लेकिन ये सब कुछ कब है? जब वो सब आपके साथ अल्लाह सुबहाना ताला के दीन के अंदर रहते हुए मामला करें। उस वक्त बात बिगड़ने लगती है जब अल्लाह की मासीयत और अल्लाह की मोहब्बत एक शख्स में दाखिल होती है। कैसे? हमें उस बंदे से मोहब्बत होती है जो अल्लाह की नाफरमानी करता है और हमें किसी ऐसी बात की दावत दे देता है कि जो अल्लाह को पसंद नहीं होती। ये वक्त हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है। ऐसे वक्तों के ऊपर तकाबुल के लिए इस आयत में कहा कि अगर अब भी तुम्हारे दिलों में अपने काफिर रिश्तेदारों की मोहब्बत मौजूद है अल्लाह की मोहब्बत से ज़्यादा, ईमान के बजाय कुफर के साथ तुम्हारा रिश्ता ताल्लुक है, तो समझ लो कि फिर तुम्हारे दिल में अल्लाह, उसके दीन, उसकी तौहीद के लिए गैरत नहीं है। इसलिए थोड़ा सा डांट का अंदाज़ है, वमन यतवल्लहुम मिनकुम, और तुम में से जो कोई भी इनके साथ विलायत यानी दोस्ती का ताल्लुक़ रखेंगे, फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो वो लोग ज़ालिम ठहरेंगे। यहाँ सिर्फ दो रिश्तों का नाम लिया गया, अगली आयतों में उसकी मज़ीद डिटेल्स हैं, समझ लीजिए। क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको अगर सही नहीं समझेंगे ना तो फिर हम अमल में गलतियाँ खाएंगे। जैसे एक अच्छा उस्ताद मैथ सिखाता है ना, तो पहले वो ज़्यादा वक्त लगाता है उसकी मिसाल या उसका तरीका समझाने में, मसलन 2 + 2, 2 × 2 क्या, क्योंकि उसके बाद अगर वो बात समझ आ गई तो 10 सवाल भी देंगे तो स्टूडेंट उसको ठीक करेगा। लेकिन जिस स्टूडेंट को मेन कुलिया, रूल, असूल नहीं समझ आया, वो एक नहीं, 10 नहीं, 100 सवाल भी गलत करेगा। आज यही हो रहा है हमारे साथ। जब मुसलमान दीन का बुनियादी पैगाम नहीं समझ पाते तो हर मैदान में गलती खाते हैं और दूसरी तरफ उसके ऊपर परेशानी का शिकार होते हैं। तो चंद जुमले लिखिएगा इन आयतों के मुताबिक जो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देंगे। पहली बात, एक बुनियादी असूल इन आयतों से अखज़ होता है और वो क्या? अल्लाह से दोस्ती के रिश्ते में कोई दूसरा रिश्ता हायल नहीं हो सकता। एक बात, ठीक, क्योंकि शराकत अल्लाह को पसंद नहीं, वो शिर्क से पाक है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हम जब ये सारी बातें कहते हैं ना, तो सिर्फ ये ज़ाहरी शख्सी तौर पे अल्लाह ताला का एक होना नहीं है, बल्कि इन सब चीज़ों के अंदर ये बात मौजूद होती है कि हम अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में किसी को नहीं मानते और हर वो चीज़ जो अल्लाह और हमारे बीच में आ जाती है उसको हम पीछे कर देंगे। अगर हमें इसे ऊपर वाली आयतें समझ आ गई हैं ना, आमनु, हाजरु, वजाहदु वाली, तो इस आयत को समझना बहुत आसान है। क्योंकि ईमान लाकर एक बंदा खड़ा नहीं रह जाता, उसको आगे से आगे बढ़ना होता है। अब अगली आयत में थोड़ी मज़ीद तफसीलात में इस बात को ज़ाहिर किया गया, देखिएगा उसका भी तर्जमा। 24, कुल, कह दीजिए, कौन कहेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये अहम सवाल पे होता है। आप देखें आखिरी तीन सूरतें, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और चौथी सूरत कुल या अय्युहल काफिरून। ये तो ख़ास तौर पे कुल से शुरू होती हैं। कुरान पाक में और भी बहुत जगह पे अहम मौजूआत पे अल्लाह अपने नबी से कहलवाते हैं। ये आयत भी उन्हीं में से फ़र्क होता है। अल्लाह ताला में सीधा सीधा भी कह सकते थे या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन काना आबाउकुम वअबनाउकुम इख्वानुकुम और आगे तक, पर नहीं कहा। क्यों कहा नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग अल्लाह से मोहब्बत से ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन जब उस नबी की ज़ात की बात आती है तो बहुत प्यार करते हैं, पर जब उनकी बात आती है तो पीछे हटते हैं। तो ये बात थी अल्लाह की, लेकिन कुल कहकर अल्लाह ने इसको नबी की भी बना दिया, इज़्ज़त दी आपको। इन कान आबा हुकुम, अगर हैं तुम्हारे बाप। देखिए लफ्ज़ आबा जमा आया, अब की जमा आबा, तो लिखिएगा आबा में कौन कौन आता है? बाप, दादा, परदादा, नाना, फिर इसके अंदर सगे सौतेले बाप भी आते हैं, फिर चचा भी आता है। हर वो जो बाप के मुकाबले में हो, अरबी ज़ुबान में बाप का लफ्ज़ अब बहुत ऊपर तक जाता है, यानी आप कह लीजिए सारे ऊपर के रिश्ते। और हदीस में चचा को भी बाप कहा गया, सिनवा, ठीक है? तो बाप से मुराद सारे बुज़ुर्ग कह लीजिए, ननिहाल और दुधियाल के भी। दूसरी सूरत व औ अबना अकुम, और तुम्हारे बेटे। सबसे पहले अल्लाह ताला ने कहा बाप, फिर बेटे। अब ना में कौन कौन आते हैं इसको भी समझ लेते हैं। अब ना में अपने बेटे, बेटों के बेटे, बेटियों के बेटे, और अगर सीगा तगलीब देखें तो बेटियां भी आ गईं, क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू मुज़क्कर का सीगा है, लेकिन उसमें औरतों को भी तो कहा जाता है ना। ये तो नहीं कहा गया या अय्युहल मोमिनात, ठीक है? तो फिर अब ना में बेटे, बेटियां, पोते, पोतियां, नवासे, नवासियां। फिर इसी तरह सगे बेटे, सगी बेटियां, सगे सौतेले, दूध शरीक, यानी हर तरह के बेटे, जिसको आप बेटा कहते हैं। आपकी उम्र से छोटे सब लोगों को आप इसमें डाल दीजिए। तीसरी कैटेगरी वह इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई। इख्वान अखुन की जमा, और भाई से मुराद सगे भाई, सौतेले भाई। अपने सगों को अगर कहते हैं, और आप कहते हैं कि हम ससुराली भाइयों को भी बिल्कुल भाई ही कहते हैं, तो फिर इसमें आपके शोहर के भाई भी हैं, देवर, जेठ, और हर वो रिश्ता जिसको आप उम्र के हिसाब से या रिश्ते के एतबार से भाई समझते हैं। नेक्स्ट वाज वाजुकुम, और तुम्हारे जौज। अब लफ्ज़ जौज अरबी ज़ुबान में स्पाउस के लिए आता है, और आप जानते हैं इंग्लिश में स्पाउस मेल के लिए फ़ीमेल और फीमेल के लिए मेल, जैसे मिस्टर एंड मिसिस होता है ना। तो लेकिन यहाँ चूँकि लफ्ज़ आगे कुम है, कुम मुज़क्कर की ज़मीर है, कुन ना तो फीमेल होता, तो अजवाज हुकुम से यहाँ हम मान ही लेते हैं बीवियाँ। लेकिन ऑब्वियसली कि अगर आप बीवियाँ हैं तो फिर आपके इसके मुकाबले में शोहर होंगे, यानी दोनों की सूरत में ये हिस्सा आ गया। मुराद ये है कि आपकी बीवियाँ या शोहर। फिर नेक्स्ट थिंग देखिएगा वाशीरतुकुम, और तुम्हारे रिश्तेदार। अशीरा का लफ्ज़ किससे है? अशरा से। अशरा क्या होता है? वो कुंबा जिसमें 10 लोग हों। अब ये कौन सा होता है? क्लोज, जिसको हम कहते हैं क्लोज सर्कट फैमिली, फर्स्ट फैमिली, या आप जिसको आप कह सकते हैं फर्स्ट कजन्स आप कह लीजिए। अमूमन देखिए तो सिर्फ अगर आप अपने करीबी लोगों को देखें तो 10 तो हो ही जाते हैं, ठीक है? अरबी ज़ुबान में मुख्तलिफ हिस्से हैं, कबाइल बहुत बड़ा होता है लेकिन अशीरा छोटा होता है, ठीक है? तो अशीरतुकुम, तुम्हारे कबीले, रिश्तेदार। व अमवाल एक तरफ तुमोहा, और तुम्हारे वो माल जो तुमने बहुत मेहनत से कमाए हैं। मेहनत का लफ्ज़ कहाँ लिखा हुआ है? ये जो लफ्ज़ ना एक तरफ़ूहा, इसमें ये जो काफ के बाद ता है ना, ये मेहनत की है, बाब इफ्तियाल बन गया। करफा से एक तरफा, मुराद ये कि वो माल जो तुम बहुत मेहनत से कमाते हो। फिर नेक्स्ट थिंग व तिजारतुन, और वो तिजारत। तख्शौना कसादहा, तुम डरते हो, खदशा रहता है तुम्हें, खतरा रहता है। कसादहा उसके मंदा होने का, कसाद बाजारी सुनिए, जैसे तिजारती खबरें पाकिस्तान में जब कभी सुनी हो तो उसमें लफ्ज़ कसाद बजाजी, यानी सामान फरोख्त मौजूद हो और गाहक ना हो, मंदा पड़ना। कई मर्द कहते हैं आज बड़ा मंदा था, आज कारोबार नहीं हुआ, आज गाहक नहीं आए, तो वो कसाद है ये। फिर आगे मसाकिनो, मस्कन की जमा, घर, सकना से सुकून वाली जगह, वो घर तर दौनहा, जिनको तुम पसंद करते हो, तुम्हारे वो मकानात जो तुम्हें पसंद हैं। हाँ क्या है मसाकिन, पसंद किसको है, मोस्टली किसको पसंद होता है घर, औरतों को। पहले तिजारत और माल किसका मोमी शुगल होता है, मर्दों का। ये अलग बात है कि आज के दौर में तो सभी कुछ ही बदल गया, लेकिन पहली चीज़ों में मर्दों के रास्ते की रुकावट माल, माल से मुतल्लिकात, और दूसरी में औरतों से मुतल्लिक चीज़ें। ये सारे नाम लिए, आबा, अबना, इख्वान, अजवाज, अशीरत, अमवालु, तिजारतुन, कितनी चीज़ें हुई, 5, 6, 7, और आठवां घर। टोटल 8 चीज़ें हैं, जिसमें अगर आप गिने ना तो आबा, अबना, इख्वाना और अजवाज, 4 चीज़ें इंसानी रिश्तों से मुतल्लिक हैं। और उसके बाद माल, तिजारत, घर, ये जो चीज़ें हैं वो बेजान चीज़ों से मुतल्लिक हैं। एक लिस्ट बना के हाथ में थमा दी, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाह, अगर ज़्यादा प्यारे हैं तुमको अल्लाह से, वह रसूल ही और उसके रसूल से, वह जिहाद इन फी सबील ही और इसके रास्ते की जिद्दोजहद से, तो फतह रब्बसु, फिर इंतज़ार करो किस बात का, हत्ता याती अल्लाह बि अम्रिही, यहाँ तक कि अल्लाह अपना फ़ैसला सुना दे। यकीन कीजिए कि ये रिश्तों का तराजू है, मोहब्बतों का इम्तिहान इसी एक आयत की रोशनी में अल्लाह ताला ने हमारे सामने पेश कर दिया। वल्लाहु ला यहदिल कौमुल फासिकीन, अल्लाह ऐसे फासिकों को राह याब नहीं करता। 8 चीज़ें गिनवाई और 8 चीज़ों की मोहब्बतों में से किसी एक या सब मोहब्बतों का जज्बा, अगर अल्लाह और उसके रसूल और उसके रास्ते की जिद्दोजहद और उसकी मेहनतों के मुकाबले में अगर ज़्यादा प्यारा है, तो फिर अल्लाह के फ़ैसले का इंतज़ार करो। यकीन कीजिए सख्त और रोंगटे खड़े कर देने वाला लहजा और अंदाज़ है, कोई नरमी नहीं है इसमें, ये डांट है। हमें से हर एक को चाहिए कि अपने अंदर एक तराजू नसब करे। आप इमेजिनेशन में एक खाली तराजू पकड़े, और तराजू कौन सी, वो जो 2 पलड़ों वाली होती थी, गोल सी, उसके नीचे चकले से होते थे, जंजीरियां होती थी और बीच में एक डंडी लगी होती थी, उसको तसव्वुर में बिल्कुल अभी खाली है। एक एक मोहब्बत डालते जाएं, आबा, अबना, इख्वान और उसके बाद अशीरा और सब कुछ, फिर ऊपर से ये घर और तजारते डाले, अब आपके जहन में क्या आएगा, एक पलड़ा भी खाली है, दूसरे में ये 8ों चीज़ें हैं, आ रहा तसव्वुर। जब आप 8 मोहब्बतें डालें और दूसरे में क्या डालना है, अल्लाह व रसूल व जिहाद, अल्लाह, उसका रसूल और उसकी रस्ते की तगो दो, अब वो 3 डालकर अब चेक कीजिए कि आपका पलड़ा किधर झुकता है। हर एक के लिए क्राइटेरियन है, एक जायज़ा है, मैं कहाँ खड़ी हूँ। और याद रखिए कि ये मुहासबा इसलिए ज़रूरी है कि बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, सूरत क़यामत की आयत 14 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर बंदा अपने अंदर की हालत को खूब जानता है, यानी आप मेरी नहीं जान सकती और मैं आपकी नहीं जानती। हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि अगर तो इसकी सारी ख्वाहिशें, मोहब्बतें और हकूक, बीवी, औलाद, नफ्स, इन 3 मोहब्बतों के ताबे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके मामलात ईमान के मुताबिक हैं, दुरुस्त हैं, काबिल हैं। लेकिन अगर इन 8 में से कोई एक भी चीज़, ज़रूरी नहीं कि 8 हो, कोई एक चीज़ की मोहब्बत का ग्राफ ऊपर चला गया, तो वहीं तौहीद ख़त्म और शिर्क शुरू। और इसी को आपको पता है, अल्लामा इकबाल ने एक शेर में क्या पेश किया था, ये माल व दौलत दुनिया, ये रिश्ता पैवंद, बुताने वहम गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहते हैं ये माल दौलत दुनिया, ये जो हमारे रिश्ते आपस में जोड़ लगे हुए ना, ये वहमो गुमान के बुत हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह के मुकाबले में ये चीज़ें क्या हैं, अगर आप देखें तो 8 चीज़ें ना, तो इनमें पहली 5 चीज़ें रिश्ता पैवंद के ज़िम्रे में आती हैं, और आखिरी तीन चीज़ें माल और दौलत दुनिया। क्या पता चला कि इन चीज़ों की असल में कोई हकीकत नहीं, ये हमारे वहम और तवहम के बुत हैं जो बनाए हुए हैं। जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह की शमशीर से इन बुतों को नहीं तोड़ेंगे, बंदे मोमिन के दिल के अंदर की गहराइयों में तौहीद का आलम नहीं बुलंद होगा। आप देखिए कि ये ऐसा खूबसूरत मुकाम है कुरान पाक का कि जो ना चाहते हुए भी अंदर झांकने की दावत देता है। ये है वो जगह जहाँ आके हम हर जाते हैं, ये है वो जगह जहाँ आके हमारी कमिटमेंट्स दम तोड़ने लगती हैं, ये है वो जगह जहाँ हम उलाइकल मुकर्रबून के ज़ुमरे से निकल कर असहाबुल जमीन में घुसने लगते हैं। कह लीजिए ये है वो चीज़ें जिन जगहों पे आकर हम पोजीशन होल्डर से निकल कर पासिंग मार्क्स में आ जाते हैं। ये जुमला मैंने बहुत दफ़ा बोला है, आज फिर एक दफ़ा बोल दूंगी तो कोई बुरी बात नहीं है। जन्नत हासिल करना बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ जन्नत हासिल करना आसान है, जन्नत के आला दर्जे हासिल करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने इसीलिए तो वो वी वी आई या ये पी क्लास, आप तो कहते हैं ना वी आई पी, वो वी आई 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 पता नहीं कितने उसमें आई लग के वो वी आई पी लाउंज बनती है। ये एक एक क्राइटेरियन सेट करते जाएं, बात आगे बनती जाएगी। फिर दूसरी बात, अल्लाह की विलायत के रिश्ते में कोई दूसरा रिश्ता हायल नहीं हो सकता। आप देखिए ना कि एक शख्स अल्लाह का वफादार हो, रसूल का फरमा बरदार हो, मोमिन कहलाएगा। जब ये एक शख्स है तो वो एक मोमिन है, बहुत सारे जमा होंगे तो एक जमात बनेगी। आप ऐसे लोगों को हिजबुल्ला कहेंगे। अब ऐसे लोग जब दीन की जिद्दोजहद में निकलेंगे तो वो एक गिरोह होंगे। जाहिरी बात है कि वो अपने इस नज़रिए में सच्चे हैं, उनको पता है कि ये रास्ता जो हमने इख्तियार किया है ये हमारे लिए खैर और आफियत का है। लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे इर्द गिर्द वाले उस चीज़ की हकीकत से आगाह नहीं होते और एक एक जगह पे रास्ते में रुकावट बन के खड़े होते हैं। आम हालात में ये सब जो आठ चीज़ें हैं ना, इनसे प्यार करना, इनके हक अदा करना, इनकी जिम्मेदारियां अदा करना इबादत है, इबादत है। आप घर साफ करते हैं इबादत है, आप शौहर की बात मानते हैं इबादत है, आप माँ बाप की खिदमत करते हैं सिला रहमी है, भाई बहनों से मिलते हैं सिला रहमी है, बट हुब से अहब बनना ये जुल्म है। अल्लाह ताला कहते हैं इसको हुब पे छोड़ दो। हुब क्या होती है? मोहब्बत। लेकिन अहब के सुपरलेटिव, सबसे प्यारा ना हो। किसी बच्चे को मत कहें ये मेरा वीक पॉइंट है, मेरे शौहर मेरे वीक पॉइंट है, मैं उनको नाराज़ नहीं कर सकती, मेरा घर मेरा वीक पॉइंट है, मैं अपनी तिजारत नहीं छोड़ सकता, गाहक आए खड़े हैं नमाज बाद में पढ़ूंगा, ये नहीं करना। जब तकाबुल में ये चीज़ें आ जाती हैं ना, तो उस वक्त फिर इंसान को ख़तरा हो जाता है और ये शिर्क है। आपको मुझे अपने किसी मामले में अल्लाह रसूल और उसके रास्ते की जिद्दोजहद के बीच में किसी को नहीं लाना। याद रखिए जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के रास्तों पे चलते हैं वो इंसान होते हैं, वो इंसानों की दुनिया में रहते हैं, माँ बाप के हकूक़ अदा करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, बहन भाइयों के हकूक़ अदा करते हैं, माशरे का वो सबसे मुंझा हुआ और शाइस्ता इंसान होता है जो दीन का काम करता है। वो कोई खुदा ना खास्ता कोई कठोर और बेरहम शख्स नहीं होता। लेकिन अगर इनमें से कोई रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल के रिश्ते की कीमत बन जाए या अल्लाह और उसके रसूल के रिश्ते पर गालिब आने लगे, तो फिर वो उनको निभा नहीं सकता। माँ बाप और रिश्तेदार गलत नज़रियात पर चल रहे हों तो एक मोमिन तबई तौर पे सच्चाई के साथ अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे चलेगा। वो ये कहकर गलत को नहीं अपनाएगा कि नहीं अब क्या करूं फिर, मेरा तो खानदान ये नहीं पसंद करता। सबकी रहनुमाई है, लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल की रहनुमाई आएगी तो इंसान उसके ऊपर चलना पसंद करता है। और असल में ये चीज़ है जो दिल को सुकून देती है। इस दुनिया में अगर आपको कहीं सुकून और खुशी है तो कब लिखें एक जुमला कि अगर कभी इनके ताल्लुक और ताल्लुकात में तसादुम हो जाए तो इंसान का फैसला अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हो। रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीनम व बि मोहम्मदिन नबीय। चूँकि मैंने अल्लाह को रब कह लिया, इस्लाम को मान लिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लिया तो अब मुझे अमली तौर पर भी उनकी तरफ चलना है। और ये पूरा यकीन रखिए कि अल्लाह ने हमें कोई ऐसा तकाजा नहीं दिया जो नाजायज़ हो। जो बीवी शौहर की बात नहीं मानेगी वो गुनाहगार है, जो शौहर बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं पूरा करता वो गुनाहगार है। इस्लाम ये नहीं कहता कि इन सब को छोड़ दो, क्योंकि इस बात को बुनियाद बनाकर कई लोग गलत ले जाते हैं, कहते हैं फिर घर छोड़ दें, फिर शौहरों को छोड़ दें, फिर बीवियों की बात ना माने, बस आप कहते हैं एक ही काम। आप नहीं कहते, ये अल्लाह आपको सिखा रहा है। अहब्बा इलैकुम, सबसे प्यारा अल्लाह और उसका रसूल। देखिए हज़रत उमर से अल्लाह के नबी ने क्या पूछा कि उमर आपको मुझसे कितना प्यार है? कहा सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ लेकिन अपनी जान से ज़्यादा नहीं। कहा फिर उमर आपका ईमान नहीं पूरा? कहा अच्छा। फिर आपने हाथ रखा उनके सीने पे और अल्लाह ने उसकी क्या तासीर की, या उमर को बात समझ आ गई होगी, कहा अल्लाह के नबी अब तो मेरा दिल खिल गया, अब तो मुझे आप अपनी जान से भी प्यारे हैं। कहा उमर अब तेरा ईमान पूरा हुआ। इसी तरह एक हदीस में आता है कि किसी का ईमान पूरा नहीं जब तक अल्लाह और उसका रसूल उसको दुनिया के हर रिश्ते से प्यारा ना हो जाए। देखिए मैं और आप आज एक महज़ब ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो ये किसकी रहमत है? जंगली होते, बदवी होते, ख़ानदानी ना होते, लड़ते झगड़ों झगड़ों पे पड़ते तो क्या बनता? नहीं, इसलिए कि असल हदफ और मंजिल वो अल्लाह का दीन है जो अल्लाह और उसके रसूल से रिश्ते के साथ वजूद में आता है। दीन की पाबंदी और उसको सबसे ऊपर समझना ये ज़िंदगी का खूबसूरत रवैया है। इसी से फिर इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी एक ख़ास रुख में ढलती है। आपको पता है कि आज हम मुसलमानों का, और फिर मैं वही कहूँगी इंडो पाक कल्चर, क्योंकि हम ज़्यादा दूसरे कल्चर वालों को नहीं जानते, मैं तो ज़्यादा पाकिस्तान वालों को जानती हूँ, कुछ को आप इंडियन में जानते होंगे, इल्ला माशाल्लाह एक जनरल रूल देखूँ हमारा आज का इशू ये है। नमाज रोज़ा हज ज़कात मारूफ है, अब्बा भी पढ़ते थे, दादा भी पढ़ते थे, ससुर जी भी कहते थे और इन्हीं चीज़ों की दावत देते थे। और रिवायात इतनी खूबसूरत थी पहले लोगों की कि वो कभी कोई मुश्किल नहीं पड़ती थी उनको। बट आज हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ अल्लाह के रास्ते की जिद्दोजहद के आदी नहीं है, और जो ये काम करने लगे लोग सोचते हैं ये कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है, हालांकि ये दीन का ततिमा था। तो खुलासा क्या है आप और मैं अपने आप से पूछें, क्या कोई मेरे पाँव की बेड़ी तो नहीं है? और याद रखिए जहाँ से जंजीरी कमज़ोर होती है वहीं से टूटती है। कोई अल्लाह और उसके रसूल के ताल्लुक़ की डोर अपने बच्चे की वजह से तोड़ लेता है, कोई बीवी की वजह से, कोई शौहर की तरफ से, और ये ताल्लुक इतना सादा और इतना आसानी से समझ आने वाला है कि इसके बाद तो किसी दूसरी तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। अच्छी तरह रिश्तों को निभाएं, बस आप घर को देखें, लेकिन नमाज के वक्त पे घर का काम करें और नमाज चली गई, बस ये हुब से अहब बन गई। कितनी नमाजें हमारी ज़ाया होती हैं खाने पकाने संवारने सजाने पे, वो जायज़ नहीं है, उसको निकालना पड़ेगा ज़िंदगी से। शौहर बीवी है, आपस में हैं, खुश रहिए, अल्लाह ने आपको एक नेमत के तौर पे रखा, लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे का नाम लेकर अल्लाह और उसके रसूल के दीन के किसी तकाजे से दूर रहे, ये आजमाइश होगी और ये आजमाइश बनती है। किसी पौधे को बहुत पानी देना तो वो भी गल जाता है। बाज़ दफ़ा हम अपने घरों को, बच्चों को, ख़ानदानों को ज़्यादा ही पानी देने लगते हैं, नुकसान क्या होता है? फिर ज़रा सा पानी कम करें जो ज़रूरी था उनकी भी बका के लिए, तो वो कहते हैं आपने मेरा हक ले लिया। और बाज़ दफ़ा आप देखिए कि दीन की तरफ आते ही लोग हमसे नाराज़ क्यों होने लगते हैं? कुछ लोग कहते हैं घरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, नाराज़गियाँ, वजह पहले ज़्यादा दिया हुआ था। अल्लाह और उसके रसूल के कई हक़ हमने इंसानों को दिए होते हैं, बस दीन पढ़ के समझ आती है तो वो एक एक करके हम वो हक़ वापस लेते हैं, तो लोग कहते हैं जी ये बदल गए, इनके अंदर तब्दीली आ गई। तो आप खुद को देखेंगे, मैं खुद को देखूंगी, कोई आपसे मुझसे अलग से सवाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ पूरे यकीन से कह सकती हूँ, अगर आपको ज़िंदगी में खुशी चाहिए, इत्मीनान चाहिए, सुकून चाहिए, शरह सदर चाहिए, कुछ करके जाने का एहसास चाहिए, तो फिर हर बंदे को, हर चीज़ को उसकी जगह पे रखें। अगर आप इस असूल में पक्के हो गए ना, तो यकीन कीजिए कि आप कामयाब हैं। और यहाँ एक छोटी सी बात करती हूँ, किसी हद तक सीरत तो सभी ने पढ़ी है, आपको क्या लगता है नबी सल्लम के ये रिश्ते नहीं थे? बेटे बेटे की जगह बेटियाँ थी, और आबा की जगह चचा थे, दादा था, پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے خاندان کے اور بزرگ بھی تھے، بیویاں تھیں، بچے تھے، گھر تھا، تجارت تھی، کیا نعوذ باللہ آپ کے قریبی لوگ ہر وقت جھگڑا ہی کرتے تھے آپ سے، گھر کو توجہ اب نہیں دیتے، کیا مسئلہ ہے، میری شادی کس سے ہو گئی، کیا میں مشکل میں پھنس گئی، یہ ہو گیا. مجھے بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک روپ میں بھی ناکام تھے؟ آپ پڑھیے رہبر کامل، پڑھی بھی ہے، ویب سائٹ پہ بھی، آن لائن پہ بھی موجود ہے، کتاب پڑھ لیجئے، 19 مختلف اینگل ہیں جس میں آپ ایک کامیاب انسان دکھتے ہیں. وجہ پھر کیا ہے؟ پھر سوال لکھیں، میں کیوں نہیں کامیاب ہو پاتی؟ یہ کوشچن ہے، کیونکہ اللہ کے نبی تو ان سے زیادہ مصروف کوئی نہیں تھا، ان کے جتنی ذمہ داریاں تھیں اتنی میرے آپ کے اوپر نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا آپ بیلنس تھے؟ اور سب سے بڑی بات، جو اللہ سے ڈرتا ہے لوگ اس سے ڈرتے ہیں. اصولوں کے پابند تھے؟ آپ نے نہ کبھی کسی کی غلط بات سنی تھی اور نہ کبھی غلط کہی تھی. تو یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کردار کے اندر جو چھوٹے چھوٹے لوپ ہولز ہیں نا، ان کو دور کر دے.
سچ میں نے اسی چیز سے یہ سیکھا کہ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتے یا اس کے راستے میں نہیں لگاتے تو پھر اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں کو آزمائش بنا دیتے ہیں، اور پھر اس وجہ سے ہم ان میں اسٹک ہو جاتے ہیں.
جی بالکل صحیح ہے. دیکھیں نا، کھانا نعمت ہے نا، تو ضرورت سے زائد کھانے لگ جائیں، کھاتے رہے کھاتے رہے، تو کیا وہ نعمت رہے گی؟ وہ تو جسم کے لیے بوال بن جائے گا. سونا نعمت ہے نا، تو سوتے جائیں مس یوز ہے. ہر چیز کو اتنا جگہ دیں. آپ اپنے لیے ایک چیز لکھیں، ہر چیز کو میں نے اتنی جگہ دینی ہے جتنی اس کی اہمیت ہے، اتنا وقت دینا ہے جتنا اہم ہے. آپ مثال گھر کی لیں، ہم خواتین کا سب سے بڑا ایشو ہی گھر ہوتا ہے. کل بھی ایک سسٹر نے کہا کہ اس گھر کو تو جتنا بھی دیکھ لو پھر بھی ایسے ہی رہتا ہے، سارا صاف کر کے سمیٹ سمارٹ کے آپ سوئیں گے، صبح صرف بچوں کے اسکول جانے اور میاں کے جانے کے بعد وہ گھر 50% پھر پہلے جیسا ہو چکا ہوتا ہے. کھا پی کے سوئیں گے، رات کو صبح اٹھ کے پھر بھوکو گے، ہے نا. اتنی گنجائش دیجئے جتنی ضرورت ہے. بہت زیادہ پیمپر کرنا ایک چیز کو، بچوں کا کھانا کیوں اہم سمجھ. ایک دن صرف ان کے ہاتھ میں بریڈ اور اس کے ساتھ ایک وہ بیل پیپر پکڑا دیں، ایک بائٹ اس کی لے لیں، ایک لے لیں، کیا ہوگا ہمارے بچوں کو. کسی نے صرف ان کو پیئر کا ناشتہ دیں، جاؤ بھائی یہ ایک پیئر لو اور کھاؤ، گاجر دے دیں. کوئی ضروری ہے کہ ان کو چھ چھ قسم کے ہم ناشتے بنا کے دیں؟ اور یاد رکھیے، جتنی نعمتیں ملتی ہیں، جتنی آسائشیں ہوتی ہیں نا، اتنا انسان مقصد سے دور ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، یہاں پہ رکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ کل والا سبق ہم اس سے بھی زیادہ ایمان کے ساتھ سنیں. چیک لسٹ آج کی بہت کلیئر ہے، اپنا محاسبہ کریں، یہ 8 چیزیں لکھیں اپنی اپنی، اور خود سے پوچھیں ایک ایک کا نام لے کر کہ میں ان کی محبت کو بیلنس میں رکھتی ہوں، کیا میرا گھر میرے اور اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں ایک رکاوٹ تو نہیں ہے، اور کیا میں اپنے ماں باپ کا نام لے کر غلط چیزوں پہ، غلط عقائد پہ تو نہیں جمتی. اور اسی طرح سے آپ اپنے ہسبینڈ سے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مال کمانے کے بارے میں آپ بھی اپنی چیک لسٹ بنائیں. اور اس پہ میں یہ بات کہوں، کیونکہ سامنے سسٹرز ہی ہوتی ہیں نا تو بات نہیں کر پاتی، لیکن حقیقت ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں اور شوہروں کو بھی، کہ صرف کمانا ہی زندگی کا مقصد نہیں ہے. کچھ مردوں نے تو زندگی صرف پیسے کمانے کا نام بنا لیا، وہ پیسوں کی مشین ہے. بچوں کو بھی ابا اگر سنڈے کو مل جائیں تو بڑی بات ہے، کیونکہ ابو نے بھی خوش کرنے کے لیے ان کو 100-100 کے نوٹ ہی تھمانے ہیں. یہ درست نہیں ہے. جس طرح ماں بچے کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے تو باپ کا بھی ضروری ہے. اور دوسری بات ہے کہ بچے خاموش گواہ ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ابو صبح اٹھ کے جاتے ہیں کام پہ اور سارا دن کماتے کماتے رات کو آ کے سو جاتے ہیں، تو ان کا بھی رول ماڈل بعد میں یہی بن جائے گا. تو بیلنسڈ ہو، اپنے ٹائم کے 3 حصے کریں، اپنے مال کے 3 حصے کریں. دیکھیے اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں. میں اکثر سوچتی ہوں بعض باپ خاص طور پہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں. کس لیے؟ تمہارے لیے تو کر رہا ہوں. تو بھائی آپ ہی نہ رہے تو میں نے پیسوں کو کیا کرنا ہے. بچوں کو کہتے ہیں ان کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں، بھائی ان کو باپ بھی تو چاہیے. چلیں یہ تو ترس کھا کے پیسے کوئی بھی دے دے گا، باپ تو نہیں دوبارہ ملتا. تو اپنی صحت نہیں خراب کرنی چاہیے. پھر ایک تیسری چیز میں نے مردوں میں دیکھی، اپنا موڈ خراب کر لیتے ہیں. ہو جاتا ہے آف کورس، جب بندہ ایک ضرورت سے زائد بوجھ ڈالے گا تو موڈ خراب ہوگا نا. اور مائیں بھی، آپ اور ماں اور باپ ایک اصول بنا لیں، نہ موڈ خراب کرنا نہ صحت خراب کرنی ہے. ہنستے ہنستے جتنا کام کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے، باقی وقت کو انجوائے کریں. اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. डांट बड़ी सख्त है, ये जो या थी अल्लाह भी हमरी है ना, इसमें दो बातें, या तो अल्लाह तुम्हें मौत दे दे या फिर क़यामत ही आ जाए। यानी इस पर बात करने लगे, बड़ी सख्त बातें करते हैं, मैं तो वो सख्त बात कर ही नहीं पाती। वो कहते हैं कि इसमें अंदाज़ है, गेट आउट, निकल जाओ, शक्ल ना दिखाओ मुझे, पता रहा बस वहाँ खड़े हो जाओ। जैसे माँ को बच्चे पे बड़ा गुस्सा आता है ना, तो बच्चा कुछ बोले भी ना तो माँ उसके साथ कहती पीछे हो जाओ, शक्ल ना दिखाओ, शक्ल गुम करो। ये बात है इधर, फ़त रब्बसु हत्ता याती अल्लाह भी अमरी, अभी इंतज़ार करो। तो डांट बहुत है इसमें, लेकिन उम्मीद भी है, अल्लाह ताला आपको मुझे उम्मीद से खाली ना रखे और हम बेहतरीन तरीके से इन आयतों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.